الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام سبق آموز خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا دیکھ سکتے ہیں۔
محکمہ پولیس کے مطابق رواں برس اب تک 39 ایسے بچوں کو بچایا گیا جو گاڑیوں میں بند تھے۔ ملک میں ایک بار پھر خسرہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 8 ماہ کے دوران 470 کیسز رپورٹ ہوئے۔
خسرہ ایک متعدی بیماری ہے جو ایک وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے۔
لاہور، باپ نے 3 سالہ بیٹے کو صوفے پر پٹک کر مار ڈالا۔
پارا چنار میں جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے تنازع پر دو قبائل کے درمیان فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ سنگ دل بیٹے اور بہو کے ہاتھوں قید میں رکھی بوڑھی عورت بازیاب۔ آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اسمارٹ فون نے انسانوں کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ ہر انسان کو غذا ایندھن کے طور پر چاہیے ہوتی ہے، لیکن اکثر ہم اپنی ضروریات سے زیادہ کیلوریز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ قوت مدافعت انسان کے اندر موجود ایک ایسی صلاحیت ہے جو ہمارے جسم کو بیرونی بیماریوں کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔
جن میں یہ ڈیفینس میکنزم کمزور ہوتا ہے تو وہ بیماری کی طرف زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ان میں بیماریوں کے اثرات زیادہ نمایاں طور پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
جو پہلی خبر آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور اس کے متعلق جو رپورٹ بتائی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہو بہت رہا ہوگا، ہمارے پر رپورٹ یا تو کم ہیں یا پھر یہ کہ احتیاط یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، وہ ہے بچوں کا گاڑی کے اندر بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ شیشے بند کر دیے یا لاک کی ہوئی گاڑی ہوتی ہیں اور چائلڈ لاک ہم لگاتے نہیں ہیں، یا کوئی اور ایشوز ہو جاتے ہیں کہ گاڑی میں بچہ ہوتا ہے اور ہم شاپنگ کے لیے چلے گئے، کچھ اور کام کے لیے ہم نکل گیا، بچہ بچہ ہوتا ہے، یہ خدا نہ خواستہ کچھ گاڑی کے اندر ایسی حرکت کر دے، گیئر آگے پیچھے کر دے یا کوئی ایسے اسٹیئرنگ کے ساتھ پرابلم کر دے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کار والے حضرات ہیں، اور دنیا میں کروڑوں کروڑوں لوگ کار والے حضرات، اور اب یہ کار کا رجحان ایک طرح سے اگر میں کہوں تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اب ڈیفینیٹ جب کار لینی ہے تو پھر جب ہم کار والے نہیں تھے اس وقت کے بعد جب ہم کار والے ہوئے ہیں اور ایک فیملی ممبر بھی ہیں تو ہمیں کچھ اس کے بھی طریقے کار کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اب خود کو بھی، اپنی فیملی کو بھی، دوسروں کو بھی نقصان سے بچائیں۔ بچوں کی رپورٹ کیا تھی کار میں جو رکھ کر چلے گئے، آئیے دیکھتے ہیں۔
بچوں کو 10 منٹ کے لیے بھی بند گاڑی میں چھوڑنا ان کی موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ بچوں کو گاڑیوں کے اندر چھوڑنا ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دم گھٹنے، بے ہوشی اور یہاں تک کہ شدید گرمی اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کی موت ہو سکتی ہے۔ دبئی پولیس کے مطابق رواں سال 2021 کے پہلے 5 مہینوں میں کاروں اور لفٹوں میں بند بچوں کی 95 تکلیف دہ کالوں کا جواب دیا گیا۔ محکمہ پولیس کے مطابق رواں برس اب تک 39 ایسے بچوں کو بچایا گیا جو گاڑیوں میں بند تھے۔ ان میں سے کچھ کو غلطی سے وہاں چھوڑ دیا گیا، جبکہ کچھ کے والدین نے خریداری کے لیے جاتے ہوئے کاروں میں بند کر دیا تھا۔ بچوں کی عمریں 2 اور 4 سال تھیں۔ والدین نادانستہ طور پر گاڑی کی پچھلی نشستوں پر سونے والے اپنے بچوں کو بند گاڑیوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے جہاں بچے اپنے والدین کے علم کے بغیر کاروں میں گھسنے میں کامیاب ہوئے۔
اس میں ایک مشورہ میں یہ بھی دوں کہ کار میں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہوگا کہ جیسے بچہ سو رہا ہے اور ہم اتر کر گئے کہ یار چلو ابھی میں آتا ہوں، تو دکان پہ بھی رش ہو سکتا ہے، آنے جانے میں بھی لیٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا خدا نہ خواستہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ گئے اور آپ ہی کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، تو آپ کو حادثہ ہو گیا اور بچہ کار کے اندر، بالکل کھڑکیاں اور ونڈو ساری اس کی بند ہے، لاک ہے، اب بچہ رو رہا ہے اور کسی کو خدا نہ خواستہ آواز بھی نہیں جا رہی ہے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ گھروں میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, بہت ہی ڈینجرس ہے. بچہ کب اٹھ جائے, اٹھ کر خدا نہ خواستہ کیا ایسا کام کرے, اللہ نہ کرے کہیں کود جائے یا کوئی ایسا اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے, دروازہ کھولنے میں ایشو ہو جائے, یا خدا نہ خواستہ گھر میں گیس گھر میں بھی آ جاتی ہے اور گھر میں بھی اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی آن آف کرتے ہوئے کوئی خدا نہ خواستہ کرنٹ کا سلسلہ ہو جائے, یا گھر میں کوئی ایسا موذی جانور آ جائے جس سے بچہ ڈر جائے, واٹ ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے. گیلریاں ہوتی ہیں کئی گھروں کے اندر, بچہ گیلری سے خدا نہ خواستہ کود سکتا ہے. بچوں کے تعلق سے ہماری جو بے پرواہی ہے اس کا نوٹس کرنا چاہیے. بچہ سیڑھی اترتے چڑھتے وقت اس کو نوٹس کرنا چاہیے. نئی بازوں کا توجہ ہوتی لوگوں کی, یا مطلب بس یہ کہ اپنے کام میں ہم مصروف ہوتے ہیں اور بچوں کو ڈیفینیٹلی کوئی ایک آدھ تو بچہ تو بچہ ہی, جیسے نابینا کے لیے ایک آدمی ضروری ہے تو بچے کے لیے بھی تو ایک شخص ضروری ہے یا نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو کیئر کرے اور اس کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ دے. اسی طرح لفٹ ہے. اب موسٹلی جو بلڈنگس ہیں دنیا بھر میں اس میں لفٹ ہوتی ہیں اور ایک سے زائد لفٹ بھی ہوتی ہیں, اور اب تو تقریباً یہ 10 منزلہ بلکہ 6 منزلہ 5 منزلہ 15 منزلہ تو اس طرح ہائی رائز بلڈنگس بنتی ہیں, ان میں بھی لفٹس ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس میں فیملی رہتی ہیں تو بچہ چڑھتا اترتا, بچوں کے لیے بڑی آزادی ہوتی ہے. اب ایسا کوئی لفٹ سسٹم مجھے میری نوٹس میں نہیں, اگر ہو تو میں نہیں جانتا, ہو تو کوئی تعجب بھی نہیں ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ بچے سے لفٹ کھلے ہی نہ, ہر فلور پر لفٹ کے کوئی کوڈس ہوں اور وہ اتنے کم از کم اونچے ہوں کہ بچے کا ہاتھ نہ پہنچے. کہ نارملی جو لفٹ کا جو کالنگ بٹن ہوتا ہے وہ اتنا نیچے ہوتا ہے کہ بچہ بھی اس کو دبا سکتا ہے, اور بعض اوقات بچوں کے لفٹ میں اکیلے ہونے کی وجہ سے ایک یا دو یا اس سے زائد یا کم بچے لفٹ میں ہیں, اس میں حادثات ہوئے ہیں, بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بچے انتقال کر گئے. جی ہاں, اور یہ ویڈیوز ہم نے خود اپنی سبق آموز خبریں میں بھی دکھانے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو بچہ بچہ ہوتا ہے, اس کو اکیلا چھوڑ دینا, سڑک پر اکیلا چھوڑ دینا, روڈ کراس کرتے ہوئے اکیلا چھوڑ دینا, سیڑھی چڑھتے اترتے ہوئے اکیلا چھوڑ دینا, ہم گھر میں ہیں ہمارا یعنی بچہ تو بچہ ہے, یا تو سویا ہوا ہے, جاگ رہا تو آواز کیوں نہیں ہے اس کی, وہ کیا کر رہا ہے, نوٹس کرنا چاہیے ہم کو. اور یہ چند سالوں کی مشقت ہے جو والدین اور جو سرپرست اور گارڈینس ہوتے ہیں ان کے لیے چند سالوں کی مشقت ہے. پھر ماشاءاللہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں وہ کیئر کر لیتا ہے یا کال کر لیتا ہے, یہ سب چیزیں بچہ کر سکتا ہے. کیونکہ موبائل خدا نہ خواستہ اگر بچہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو موبائل اگر گاڑی میں بھی ہو تو بچہ تھوڑی موبائل یوز کر سکتا ہے, لفٹ میں ہو. اچھا یہاں پر میں ایک بات مشورتاً ایک اور عرض کرتا چلوں, کئی لفٹ ایسی ہیں آپ کی شاید بلڈنگس میں یا آپ کی آفیسز کے اندر یا آپ کی کسی بھی عمارت کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو اس لفٹ کے اندر نہ انٹر کام ہے, نہ اس کے سٹاپ کا بٹن کام کر رہا ہے, نہ اس کے الارم کا بٹن کام کر رہا ہے. یہ نوٹس کیجئے گا پلیز. اس میں آپ کے کوئی بوڑھے ماں باپ, آپ کے گھر کی عورتیں اور گھر کے بچے کوئی بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں. اب اترے لفٹ میں یا چڑھے لفٹ میں اور یہاں لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے, یا خود ٹیکنیکلی فالٹ ہو گیا اور لفٹ رک گئی, لفٹ جب رکتی ہے تو اس کا فین بھی بند ہو گیا, اس کی لائٹ بھی بند ہو گئی. اب کوئی ایسی ایمرجنسی نہ انٹر کام, نہ اس کا ایمرجنسی بٹن, نہ اس کا کوئی اور اچھا, یا پھر اسٹاپ کرنے کے لیے بھی تو بٹن ایک ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کپڑا پھنس گیا ہے یا بچہ پھنس گیا ہے یا کوئی سی چیز پھنس گئی ہے, امیڈیٹلی بٹن اسٹاپ کیا اور لفٹ رک گئی, اور وہیں مطلب پھر وہ تھوڑا سا پروسیجر کے بعد ہم ترکیب بنا سکتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی لفٹ لگی ہے تو لفٹ کے اندر یہ فنکشنز موجود ہیں اور اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ کار بھی معلوم ہونا چاہیے. تو لفٹ ہے, کار ہے, اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں اپنا, اپنے بچوں کا اور اپنے دیگر فیملی ممبرز کا جو ایک خیال رکھنا ہے, اور سیلف پروٹیکشن جو ایٹیکیٹس ہیں اس کو باقاعدہ اس کو سمجھنا اور سیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا اگر آپ اس وقت مجھے جہاں بھی دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ کا کہیں بھی آنا جانا لفٹ کے ذریعے ہے یا آپ کا کہیں بھی آنا جانا کار کے ذریعے ہے, تو کائنڈلی اب کبھی بھی ایسا مت کیجیے گا کہ آپ گاڑی سے اترے بیٹا 2 منٹ بیٹھنا میں آ رہا ہوں, بیٹا 2 منٹ بیٹھنا میں آ رہا ہوں, وہ बेटा 2 मिनट घर में नहीं बैठता, कार में कहाँ से बैठेगा। अब घर में बेटे को 2 मिनट बिठाने में मुश्किल हो जाती है कि ये किसी जो कुर्सी पर बैठता है ना किसी दस्तरखान पर बैठता है। अब बोले बेटा कार में बैठना, और वो कार में इसको हिलाएगा उसको हिलाएगा, वो स्विच निकाल दिया, वो फ्यूज उड़ा दिया, कुछ सीट पे प्रॉब्लम कर दिया, गेट खोल कर बाहर निकल गया। अब क्या कर सकते हैं? जब पता है कि बच्चे की ये प्रैक्टिस रहती है कि हमारा बच्चा बैठता नहीं है, या फिर बैठता है तो फिर खुदा ना करता घुटन हो सकती है, कार में अचानक फायर हो सकता है, कार में अचानक आग लग सकती है, कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कोई आकर कार को एक्सीडेंट कर सकती है, खड़ी कार को भी तो लोग मारते नहीं मारते। तो इन तमाम तर पहलू को, और जो मैं कह रहा हूँ ये कई ऐसे नहीं है कि कोई बिल्कुल फर्जी गुफ्तगू है, नहीं, ये वाकया दुनिया भर में रिपोर्ट्स होते रहते हैं कम या ज्यादा, मगर हम चूंकि इग्नोर कर जाते हैं और इसे सीरियस नहीं लेते। और अभी भी जैसे मैं कह रहा हूं तो शायद हो सकता है कि कईयों की नीयतें बन रही हों कि नहीं यार बात तो समझ में आती है यार, बच्चों का ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक है, लिफ्ट का ताल्लुक है, और ये है तो वो है, तो ये इमरजेंसी वगैरह नहीं, या बात तो उसकी दुरुस्त है, या कुछ करना चाहिए। अब हमारा भी अजीब है, गरीब है, रात को सोएंगे सुबह उठेंगे तो हमारा वो सोफे रीस्टॉल हुआ होगा, अभी की बातें तकरीबन भूल भुलैया हो गई होंगी, ताकि निसियान जिसको हम कहते हैं वो होगा, इग्नोर कर देते हैं, डिले टैक्टिक्स से काम लेते हैं कि यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो इसमें हम सब की, मैं भी हूँ इसमें आप भी हैं, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देर आर टू बिग पिलर, बहुत जबरदस्त ये बहुत बड़े पिलर हैं, सेफ्टी भी और सिक्योरिटी भी। हम सिक्योरिटी को भी देखते हैं बट सेफ्टी को भी देखें, सेफ्टी मेजर्स ये पूरी एक अलग साइंस है, सिक्योरिटी मेजर्स ये पूरी एक अलग साइंस है। हर एक के यहाँ सिक्योरिटी की जरूरत हो या ना हो, सेफ्टी की जरूरत मोस्टली सबके यहाँ हुआ करती है। हम सबको आजमाइश से अल्लाह बचाए, उसके करम है, वो बगैर आजमाइश बगैर इम्तिहान के हमें फुल पास कर दे, और करम हो जाए, दुनिया और आखरत की भलाइयाँ मुकद्दर हों। अल्लाह करीम हम सब के दीन ईमान जान माल इज्जत आबरू घर बार कारोबार रिस्क हलाल अहल वयाल नस्बतें सब की हिफाजत फरमाए। कुछ बातें अर्ज करनी थी वो मैंने कर दी हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशरती खराबियाँ ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और बड़े मतलब के वो परेशान वाले हैं यार, इतनी इतनी सी चीज़ों पर, इतनी इतनी सी बातों पर। जैसे अभी आपने वो सुना होगा कि अम्मा को कैद कर लिया, इसके अलावा और भी कई और इश्यूज हैं जो हमने इसको एक पैकेज की सूरत में लिया हुआ है। तो ये माशरती तौर पर जो खराबियाँ हमारे यहाँ सोसाइटी में हो रही हैं, आइए उनकी कुछ खबरें देखते हैं।
लाहौर, बाप ने 3 साल बेटे को सोफे पर पटक कर मार डाला। कबूतरों के झगड़े पर नौजवान कत्ल, मकतूल नौजवान के अहले खाना ने मुलजिम को घर समेत जिंदा जला दिया। मोबाइल फोन की लत, जर्मन बच्चों ने वक्त ना देने पर वालदेन के खिलाफ रैली निकाली।
अब आप ये देखिए कि ये खबरें ये समझे बहुत ही सिलेक्टेड हैं कि ये जो हो रहा है इसमें, जैसे मैं आपको एक और इसमें खबर शेयर करूं कि ये संगदिल बेटी और बहू के हाथों कैद में रखी बूढ़ी औरत बाजियाब, ये क्या हुआ था, ये क्या केस था, आइए वो देखते हैं।
संगदिल बेटे और बहू के हाथों कैद में रखी बूढ़ी औरत बाजियाब। मकान की लालच में बेटे ने बीवी के साथ मिलकर बूढ़ी माँ को कैद में रखा हुआ था। पुलिस ने बूढ़ी औरत को बाजियाब करवा लिया है। पुलिस बयान के मुताबिक बेटे और बहू ने सिंध के नवाही इलाके में मौजूद मकान की लालच में जईफुल उमर औरत को कराची में कैद किया हुआ था। पुलिस ने इत्तला मिलते ही कार्रवाई करके हबसे बेजा में रखी हुई औरत को बाजियाब करवाया और मुलजिमान को गिरफ्तार किया।
ये हमारी माशरती तौर पर हमारी सोचों की पस्त, जिसके बिल्कुल सोचे हमारी तबाह बर्बाद सी होती चली जा रही हैं। कहीं माल की मोहब्बत, कहीं जायदाद की मोहब्बत, तो कहीं किसी और चक्कर में हम ना अपने वालिदैन का अदब और एहतराम कर पा रहे हैं, ना इनके हुकूक़ की अदायगी का कोई ख्याल है, ना शोहर और बीवी के मामले में भी यही प्रॉब्लम है, औलाद और वालिदैन के बारे में ये प्रॉब्लम है, पड़ोसियों के ताल्लुक से भी ये प्रॉब्लम है। दुनिया में अजीब और गरीब और गरीब और अजीब किस्म के मामलात हो रहे हैं, यानी अगर सिर्फ हम इसी पर अपनी ये सिलसिला करना शुरू करें तो दुनिया में आए दिन कई कई इस तरह की रिपोर्ट्स बयान वो आती हैं न्यूज़ के अंदर कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दिमाग काम नहीं करता कि इतनी ज़्यादा तबाही और बर्बादी होती चली जा रही है। और मैं अपना तो यही पहले भी ज़हन अर्ज़ कर चुका हूँ कि दीन से दूरी की वजह से आपको कहीं भी यहाँ पर कोई सही मायनों में दीन को समझने वाला, इस्लाम और दीन की तालीमात पर प्रॉपरली अमल करने वाला शख्स आपको इस तरह के वाकयात में आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, उस वो एज ए मज़लूम तो शायद सामने आ सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इससे ज़ालिम आपके सामने शायद ना आए कि मियाँ बीवी मिलकर माँ के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती करें और माँ के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी करें, या माँ और बेटा मिलकर अपनी बहू के साथ इतने आवारा जुल्म ज़्यादती करें। ये भी हो जाता है कि बाप और बेटा और माँ मिलकर बहू के साथ ज़्यादती करते हैं, सास और ससुर मिलकर ज़्यादती करते हैं, दो भाई मिलकर बहन को विरासत के मामले में जुल्म का निशाना बना देते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब है, और ये माल के फितने की वजह से भी ज़्यादातर मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। अलहाकुम तकाथुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कुरान करीम ने कितना वाज़ह तौर पर फरमा दिया तुम्हें गाफिल लगा माल की ज़्यादा तलब ही नहीं, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुँह देख लिया। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो पता चल जाती है, ना जाने दुनिया में से कई केसेस और वाक़यात ऐसे होते होंगे कत्ल के, और मतलब के इज़्ज़त बर्बाद कर देने के, जुल्म ज़्यादती के, चुप चुप कर लोगों का माल हड़प लेने के, किडनैपिंग के, कितने दुनिया में ऐसे हराम और नाजायज़ और गैर अखलाकी हरकतें होती होंगी जो उन्होंने अपने ज़ोम में, तो करने वालों ने यही अपने दिमाग में सोचा कि किसी को पता नहीं चला और वो निकल भी गए, पता भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं हुए, किसी ने डर के मारे, किसी ने किस मारे थे, कुछ नहीं किया। मगर इन तमाम जुल्म करने वाले, ज़्यादती करने वाले से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने कुरान करीम का ये इरशाद पढ़ा नहीं है सूरह ज़िलज़ाल के अंदर, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन उस रोज़ अपनी खबरें बयान करेगी, यानी क़यामत की ये बातें बयान हो रही, यानी ज़मीन अपना राज उगलेगी। क्या? जिसने इस पर नेकी की ज़मीन बताएगी वो ज़मीन का हिस्सा बताएगा, जिसने इस पर बुराई की वो बताएगी। फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो जिसने ज़रा बराबर भलाई की वो भी देखेगा और जिसने ज़रा बराबर बुराई की वो भी देखेगा। ये कितने वाज़े इरशादात कुरान करीम में हैं, और ये मतलब कि हमारे सोचने समझने, सही बात करूँ हमारे सुधरने के लिए बहुत हैं ये, लेकिन बस हमारे पर ऐसी दुनिया की माल की मोहब्बतें और दीन की दूरी की वजह से बेसिक है, दीन की दूरी और दीन के करीब आने के लिए हम अपने को शायद तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें गुनाह छोड़ना पड़ता है, गुनाहों में लज्जत होती है, इसकी तबाही भी लोग जो जानते हैं, बर्बादी भी लोग जानते हैं। ये बात लॉजिकल है, प्रूफ है, मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, जो देर इज नो डाउट कि बुराई का बदला बुराई ही है। आप काला रंग करेंगे तो सफेद तो दीवार पर नजर नहीं आएगा ना, काला ही होगा डेफिनेटली। इसके लिए आशिकाने रसूल की सोहबत, नेक सोहबत, जैसे दावत इस्लामी का दीनी माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह टीवी पर आप देखते हैं, मदनी चैनल देखते रहें, यहाँ वहाँ की कोई ऐसी चीज़ें ही ना देखें कि जिसकी वजह से दिल दिमाग रूह को खराबी का सामना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सब की इन बुनियादी जो हमारी खराबियाँ हैं माशरती तौर पर, जो हमारी बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं, और इसके अलावा दीगर जो भी हमारे अंदर खराबियाँ गुनाहों की आदतें, अल्लाह करीम हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आजकल एक बड़ी टर्म मशहूर हुई है, इस्तेला मशहूर हुई है, इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ात। ये इसके ताल्लुक से कुछ एक हमारे पास रिपोर्ट है, और डॉक्टर कामरान के इस हवाले से हमारे पास वीडियो भी है, आइए वो देखते हैं।
कुव्वत मुदाफ़ात कैसे बढ़ाई जाए, साइंस ने बता दिया। कुव्वत मुदाफ़ात इंसान के अंदर मौजूद एक ऐसी सलाहियत है जो हमारे जिस्म को बैरूनी बीमारियों के खतरात से महफूज रखती है, और अगर कोई बीमारी इंसान पर हमलावर हो जाए तो ये कुदरती ताकत इससे लड़ती भी है। कुव्वत मुदाफ़ात का हमारी सेहत के साथ सीधा ताल्लुक होता है। जिस कदर हमारी कुव्वत मुदाफ़ात फ़ाल होगी, इसी कदर ज्यादा बीमारियों से बचा रहा जा सकता है। साइंसी शवाइद से साबित हुआ है कि अच्छे तर्ज जिंदगी को अपना कर अपनी कुव्वत मुदाफ़ात में कुदरती तौर पर इजाफा किया जा सकता है। रिसर्च फॉर हेल्थ साइंसेज के तहत किए गए मुताले की रोशनी में माहिरीन ने सेहत का मानना है कि नींद पूरी लेना, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, फल सब्जियां खाना, मस्नूई मिठास से बचना, दरख्तों और सब्जी के करीब रहना कुव्वत मुदाफात बढ़ाने के कुदरती तरीके हैं।
اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید کچھ عرض کروں، پہلے ڈاکٹر کامران کے اس حوالے سے جو رائے ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔
قوت مدافعت جو انسان کا اپنا جو ڈیفینس میکنزم ہوتا ہے اگینسٹ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں یا وائرل انفیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں، جب انسان وہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو آپ کا جو جسم کا میکنزم اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا بنایا ہے کہ آٹومیٹکلی اس کے اندر اس کی اس جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے بیسیکلی اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جن میں یہ ڈیفینس میکنزم کمزور ہوتا ہے تو وہ بیماری کی طرف زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ان میں بیماریوں کے اثرات زیادہ نمایاں طور پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قوت مدافعت کو اپنی باڈی کے اندر بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے یا اس کو بڑھا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ قوت مدافعت جو ہے آپ کا ایک فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہے وہ اس کا کام کرتا ہے۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی بیلنس ڈائٹ۔ آپ جب پراپر طریقے سے خوراک نہیں لیتے ہیں یا بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ہیں تو آپ کا ڈیفینس میکنزم اس کے اندر کمزور ہو جاتا ہے۔ سپوز مثال کے طور پہ کوئی انسان گوشت ہی کھائے جا رہا ہے تو گوشت کھا کھا کے صرف پروٹین لے رہا ہے، باقی چیزوں سے وہ اوائڈ کر رہا ہے، تو آپ کو تمام چیزوں کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ صرف سبزیاں استعمال کرتے رہتے ہیں، گوشت کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اپنی ڈائٹ کو ان تینوں چاروں چیزوں کو ساتھ لے کے بیلنس ڈائٹ بنائیں، جس میں سے آپ گوشت بھی ایک پراپر طریقے سے یوز کریں، دالیں بھی استعمال کریں، فروٹس بھی استعمال کریں اور جو دوسری چیزیں اس کا بھی استعمال کریں تاکہ ایک بیلنس ڈائٹ ہو۔ وقت پہ خوراک لیں، پراپرلی طریقے سے لیں، اچھی طرح چبا کے اس کو استعمال کریں، تو آپ اس خوراک کا صحیح جو فائدہ ہے وہ اپنی باڈی کو دے سکتے ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پانی کی مقدار باڈی کے اندر پوری رکھنا۔ ہمارے یہاں پانی بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، صرف حسب ضرورت، جب پیاس محسوس ہوتی ہے تب پانی کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت کے اندر تو پانی کی مقدار آپ کے اندر باڈی کے اندر بہت کم ہوتی ہے۔ نارمل روٹین میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پی لینا چاہیے آپ کی، لیکن ورکنگ کنڈیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے جو ہے کام سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے فرض کریں آؤٹ ڈور پہ کوئی کام کرنے والا بندہ ہے تو وہ جو ہے اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی ایک ان ڈور یعنی اندر بیٹھ کے کام کرنے والے بندے کی نسبت۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیند کو اپنی پوری کرنا۔ لیکن نیند بھی بیسیکلی ہماری باڈی کا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیند کے اندر انسان کو ایک ریسٹ ملتا ہے تمام آرگنس کو، تمام چیزوں کو، اور بہت ساری چیزوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب آپ نیند کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے جو ذہن کے خلیے ہیں، دماغ کے خلیے جو ہیں، گروتھ کی طرف جاتے ہیں اور اس میں ایک بہتری چیز ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھیں سو کے اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں اور آپ ایک اچھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے نیند بھی آپ پوری کریں، اور نیند پوری کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے ڈیلی بنیاد کے اوپر پراپر نیند لیں، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی ورزش، کہ آپ اپنی، کیونکہ ہماری لائف اس قسم کی ہو گئی ہے، ہم لائف اپنی جو ہے اتنی بزی ہم لوگوں نے کر لی ہے، ہر چیز کے اندر مصروف ہو گئے ہیں، تو ہم اپنی ایکسرسائز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو اس میں ضروری چیز ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 12 منٹ ایکسرسائز کے لیے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہی صحیح، اس کے لیے وقت ضرور نکالیں، اس سے کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے آپ کا۔ پانچویں چیز جو ہے آپ کی، اس کے اندر جو آپ کی ایک غلط عادتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اسموکنگ کی عادت ہے یا کسی کو کولڈ ڈرنک وغیرہ زیادہ پینے کی عادت ہے، جب آپ ایک اس قسم کی عادتیں لیتے ہیں تو آپ کا وہ ڈیفینس میکنزم کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ جو چھٹی چیز کے اگر ہم آتے ہیں تو وہ ہوتی ہے جیسے مٹھاس وغیرہ جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، میٹھے کا استعمال بھی ضرورت سے زیادہ نہ کیا جائے، ایک نارمل بیلنس طریقے سے آپ یوز کریں اور اس کو یوٹیلائز بھی کریں، اس کو آپ برن بھی کریں، اس کو آپ باڈی کے اندر ختم بھی کریں، جو بھی آپ چیز یوز کر سکتے ہیں۔ ایک اور اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو فی زمانہ بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ جو ذہنی تناؤ ہے انسان کے اوپر، وہ بھی آپ کا جو ہے ڈیفینس میکنزم کو کمزور کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر بھی یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی تناؤ میں نہ رہیں، یعنی کہ آپ ڈپریشن کی کیفیت میں یا انگزائٹی کی کیفیت میں زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے ہر گھر میں ہر جگہ پہ کسی کو جاب کا مسائل ہوتے ہیں، کسی کو گھریلو کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ بچوں کی ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ایک ڈپریسو فیس کے اندر بندہ چلے جاتا ہے۔ اب جب آدمی ڈپریشن فیس میں چلے جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے خوراک کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو لازمی بات ہے جب آپ خوراک کی کمی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی जो इनटेक है वो काफी हद तक कम होती है, तो फिर उसकी वजह से आपको कमजोरी, लागरपन, और इसी तरह आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक तर होकर चला जाता है। तो बेहतर यही है कि डिप्रेशन यानी आप एंग्जाइटी की तरफ यानी तनाव की तरफ ना जाएं, और उसके लिए बेहतरीन जरिया यही है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। उससे अच्छा कोई बेहतरीन तरीका मौजूद नहीं है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से कंसर्न करके भी, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है खुदा न खास्ता आपके साथ कि आप ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं या ज़हनी तनाव का शिकार हैं, तो किसी डॉक्टर से रुजू करके उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप अमल करके आराम से अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर अपने डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 2 चीज़ें और मैं इसमें ऐड कर दूंगा। एक, विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब विटामिन सी कहाँ से मिलेगी? कुछ तो आपको अद्वियात की सूरत में मिल जाती है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप नेचुरल जो वे है उसको इस्तेमाल करें। नेचुरल वे जो है आपको फ्रूट्स के जरिए जो है विटामिन सी बहुत अच्छी तादाद में मिल जाती है, जैसे सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी रस वाले फ्रूट जो है वो कोई से भी आपने उसमें बड़ी तादाद में विटामिन सी आपको मिलती है। विटामिन डी का आप इस्तेमाल करें। विटामिन डी जो है आपकी हड्डियों के लिए तो मजबूत करती है, लेकिन साथ में जो है दूसरे जो मामलात हैं यानी डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें भी काफी काम आती है। इसमें अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, या एटलीस्ट कम से कम 12 मिनट या 26 मिनट जो है ना धूप के अंदर एक्सपोजर आपका प्रॉपरली होना चाहिए, तो उससे भी आपको काफी हद तक फायदा होता है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसपे आप अमल करके अपना डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं।
सल्लु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डॉक्टर कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस आपकी थी, यानी मालूमाती बातें आपने की हैं। अगर जब पहले भी हमने इस पर कुछ ना कुछ सुना, लेकिन बड़ी एक सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ आपने बात की। मैं एक बार फिर डॉक्टर कामरान ने जो हमें हिदायत दी हैं उसको मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ कि इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त, आजकल कोरोना की वजह से इसको बहुत ज़्यादा, इस वर्ड को, इस लफ्ज़ को और इसकी लॉजिक को वजाहत के साथ बयान किया गया है कि आपका क़ुव्वत, जैसे जो हमें ये जो वैक्सीन लगती हैं, ये वैक्सीन क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। गोया कि आपके अंदर एक आर्मी डेवलप हो रही होती है जो बाहर से आए हुए जरासीम या इस तरह की जो वायरस या वायरल होता है वो जो जब हमलावर होते हैं तो हमारी ये इंटरनल आर्मी जो है ये उससे लड़ने की ताकत रखती है। और अगर आर्मी में लड़ने की ताकत ना हो तो उसका नुकसान कितना हो सकता है, ये समझ। तो एक पूरी अंदर में एक आर्मी इस्टेब्लिश करनी है और ना होने की सूरत में प्रॉब्लम होता है। तो अब इसकी पूरा प्रोसीजर है, जैसे इन्होंने सबसे पहले का डाइट यानी कि खाना पीना, तो एक इसकी ये भी एतदाल के साथ हो, ना सिर्फ खाली गोश्त हो, ना सिर्फ सिर्फ वेजिटेबल सब्जी हो, बल्कि हर चीज़ अपनी दुरुस्त मकदार में और अच्छी तरह चबाकर और एक बड़ी कैलकुलेटेड अंदाज में ली जाए। इसके लिए भी आप कोई अच्छे डॉक्टर से इस मामले में मुशावरत करके एज पर कैलोरीज आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज की बात बताऊँगा, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज को भी डॉक्टर कामरान ने हाईलाइट किया है। इस तरह पानी, बहुत प्यारी बात की डॉक्टर कामरान ने कि हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, जबकि पानी टाइम इसका लगा वो लेना है, क्योंकि हम सोते हैं, उठते हैं और दीगर एक जो एक ख़ास मसरूफियत, नमाजें वगैरह अगर आप ले लें तो हमारा तकरीबन समझे 10 घंटे आप इसमें निकाल दें कि हम मतलब इसमें पानी पीने की शायद पोजिशन में नहीं रह सकते। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने रखी है। अब रह गए आपके पास 14 आवर्स ऑफ डे, ठीक है, तो 14 घंटे आपके दिन भर के रह गए, आपको 12 गिलास पानी पीने हैं, तो मोर और लेस एवरेज आपकी 1.25 घंटे की 1.5 घंटे की एक एवरेज बन जाएगी। तो 1.5 आवर जब आप उठ जाते हैं, उठने के बाद 1.5 आवर बिफोर द स्लीप यानी सोने से पहले 1.5 आवर का आप एक टाइम सेट कर लें कि मुझे हर 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में 2 घंटे में एस पर सूरत हाल जो कि आप डॉक्टर से अपनी वो अपने राय ले सकते हैं। डेफिनेटली ये आपको सब मेडिकल असिस्ट साथ रखनी चाहिए। तो 1.5-2 घंटे में अब जिसका सोने का और जो जिस तरह का शेड्यूल है, ताकि 10 से 12 गिलास हमारे पानी के एटलीस्ट हो जाएं जो हम पी लें। इससे इंशाल्लाह हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा डेफिनेटली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमे का जो निज़ाम है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा और बहुत सारी परेशानियों और बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर कामरान ने हमें एक और बात बताई, स्लीप यानी कि सोना, प्रॉपर सोना, जिसको मैंने चंद चीज़ें एक स्टडी की हैं और उसकी काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, तो 7 घंटे से कम सोने से भी बचें, 8 घंटे से ज़्यादा सोने से भी बचें, ये एक एवरेज बना लें, तो इंशाल्लाह इससे एक अच्छी नींद होगी। और नींद से पहले जो औरादो वज़ाए पढ़ने के हैं वो पढ़ लें, मैं आपको यही मशवरा दूंगा। और नाकिस अर्ज मशवरा आपको यही है कि आधा पौना घंटा, एटलीस्ट आधा पौना घंटा, ये मैंने डॉक्टर से मशवरा करके मैं आपको अर्ज कर रहा, आधा पौना घंटा पहले आप मोबाइल को छोड़ दें, क्योंकि वो जो मोबाइल की जो रोशनी है और जो पढ़ना है या सुनना है, डेफिनेटली दिमाग में चीज़ रहती है जो कि सोने में इतनी आपको वो किसको कहते हैं ना कि आपको प्रॉपरली और एक रेस्टफुल स्लीप जिसको कहते हैं आरामदेह नींद, उसको शायद वो मुतासिर करेगी, फिर आगे जाके बंदा फिर टेबलेट्स खाता है। तो ये एक प्रैक्टिस लें और नींद और इसके लिए इस तरह की चीज़ें कर लें। एक्सरसाइज के तौर पर हल्की फुल्की एक्सरसाइज को बिल्कुल अपने साथ हमें रखना चाहिए। बेस्ट एक्सरसाइज पैदल चलना है, 45 मिनट्स पैदल चलने की अल्लाह हमें तौफीक दे। और ये जो भी हम सेहतमंद रहने और इस तरह की चीज़ों पर जो गौर करेंगे, इसमें नीयत यही हो कि अपने रब की रज़ा हासिल करने और रब की रज़ा के काम करने में मैं अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह बुरी आदतें अगर हैं आपके अंदर, स्मोकिंग की जैसे इन्होंने आदत बताई, इस तरह और भी बहुत सारी ऐसी ख़राब आदतें होती हैं जो आदमी लेता है, खाता है, पीता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। तो कोई एक चीज़ बादों का ड्रॉप हो जाती है ना, तो वो बकिया चीज़ों को इतना यूज़फुल नहीं रहने देती। अब गाड़ी के 4 टायर हैं, आप बोले 3 में तो हवा पूरी है ना, 1 में कम है, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? चारों में हवा जितनी होनी चाहिए इतनी है कि दो आगे के 2 टायर में हवा कितनी रखनी है, पीछे के 2 टायर में हवा कितनी रखनी है? आप कहें यार 1 ही में हवा कम थी ना, या 1 ही पंचर, अब 1 ही टायर पंचर हो जाए फिर भी गाड़ी कैसे चलेगी? तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है, बॉडी मैकेनिज्म है, एक सिस्टम ऑफ बॉडी है जिसको हम सबको समझने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। मीठी चीज़ों के ताल्लुक से है कि इसको भी जब बंदा ज़्यादा इस्तेमाल करता, कभी कभार कोई सी मीठी चीज़ हमने खा ली तो एक अलग सी चीज़ होती है, वो भी एक एहतियात के साथ काम करने की कोशिश करें। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह की जो इन्होंने बात बयान की, इसको मैं गौर कर रहा था, डॉक्टर कामरान बात कर रहे थे, बाद वक्त ये होता है कि हमारी अपनी कहते जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के करतूत, शिकवा है ज़माने का ना किस्मत से गिला है, देखे है ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। बाद वक्त हमारी ये स्ट्रेस, हमारे जहनी तनाव, जहनी खिंचाव, जहन पर बोझ, तबीयतों पर बोझ, फिर मूड की खराबी, इसकी कई वजूहत हम खुद होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मतलब कि वो कहते हैं कि बस जो मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हो जाए, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा बोला जाए, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा चला जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। इतने आइडियलिज्म की तरफ हम चले जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? मैक्सिमम यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें लेने और बुरी बुरी चीज़ें छोड़ने की आदत बना लें, इजी हो जाए खाने के मामले में, पीने के मामले में। यार देखो यार लाइट चली गई, अब चली गई क्या कर सकते हैं, अब आपके परेशानी से लाइट तो नहीं आ जाएगी, यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बढ़ गया, वो घट गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं। अच्छा, एक स्ट्रेस की, जहनी दबाव की, जहनी तनाव की, जो मैं आज के दौर में ख़ास जो मैं जिसको मैं वजह समझता हूँ, हो सकता है मेरी बात गलत हो या मेरी सोच गलत हो, वो हमारा ओवरलोडेड नॉलेज को लेना है। यानी हम हर चीज़ की मालूमात लेने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया ने जो बात हमें नहीं पता चलनी चाहिए, भाई 4 दिन के बाद ये हो जाएगा, 4 दिन के बाद ऐसा मौसम हो जाएगा, अब 4 दिन तक जहन पर खिंचाओ, पता चला 4th दिन ये हुआ ही नहीं, और ना पता चलता तो ना होता। मैं आपको एक वजह वो सुनाता रहता हूँ, 1-2 दफ़ा शायद सुनाइए, मौका है। एक शख्स के बारे में मैंने पढ़ा, उसकी पायलट की लाइन थी, जहाज़ उड़ाता था, तो वो उसने वो लाइन छोड़ दी और उसने अपनी फील्ड बदल ली। एक दिन वो जहाज़ में सफ़र कर रहा था, रात का वक्त था, तो रात के बाद नॉर्मली जो एरोप्लेन होते हैं, जहाज़ होते हैं, उनमें लाइट बंद कर दी जाती है, वो डिम कर दी जाती है ताकि लोग सो जाएं। अब वो जो पैसेंजर था, उस पैसेंजर को थोड़ी बहुत जहाज़ में हिलजुल नज़र आई। सो हुआ यह था कि जहाज़ की कुछ मशीन में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। अब मशीन में प्रॉब्लम शुरू हुई तो इसकी वजह से जो कॉकपिट जहाँ पायलट बैठता है उसमें और स्टाफ में گفتگو چل رہی تھی اور تھوڑا سا نقل و حرکت اور مومنٹ شروع ہوئی, تو اب وہ چونکہ اس کی فیلڈ تھی تو وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یار دیر از سم تھنگ ان دا ایئر کرافٹ. تو وہ پریشان ہوا, دیکھا سب سو رہے ہیں. اس نے گرو پرسن کو جو اسٹاف ہوتا ہے اسے کہا کہ کچھ جہاز میں پرابلم ہے اور میری یہ فیلڈ ہے, میں ٹیکنیکلی طور پہ بھی ساؤنڈ ہوں, اگر میں کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں تو آپ پائلٹ سے مشورہ کر لیں. اس نے کاکپٹ پہ جا کر بات کی کہ سر ایک پیسنجر ہے جو شاید اس معاملے میں ہماری مدد کر سکے. تو پائلٹ نے اسے الاؤ کیا, اس نے آ کر تھوڑے بہت کام کیا. میرا خیال آئی تھنک میں نے جو پڑھا تھا آدھا گھنٹہ شاید نہیں لگا ہوگا. اس نے کچھ اس طرح کے فنکشنس اس کو بتائے, اپنے ایکسپیرینس مل جل کر کوئی شیئر کیا. تو وہ جو فولٹ تھا وہ یوں کہہ سکتے ہیں سر آٹومیشن سسٹم کے تحت وہ فولٹ ختم ہو گیا اور ایک اسموتھ فلائٹ ہو گئی. اب وہ شخص جو پیسنجر تھا, جب وہ پائلٹ کے کاکپٹ سے باہر آتا ہے, جو کیبن ہوتی ہے جس میں پائلٹ جہاز اڑاتے ہیں اس کو کاکپٹ کہتے ہیں, اس سے جب وہ باہر آتا ہے تو باہر آتا ہے تو جہاز میں وہی اندھیرا ہے اور پیسنجر نارمل سو رہے ہیں نا, سو رہے ہیں. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے. جب یہ پیسنجر کو سوتا ہوا دیکھتا ہے نا, اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میری معلومات نے جگایا, ان کو چونکہ معلومات ہے ہی نہیں اس معاملے میں, یہ سوئے ہوئے ہیں, ان کو ان کی معلومات نہ ہونے نے سلا کر رکھا ہوا, پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور میں آدھے پونے گھنٹے تک بھائی یوں ہی گھنٹے تک میں ٹینشن میرا ہو تو گیا. تو یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے شاید یہ بات نقل کی گئی ہو. ہم سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہوگا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا, یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یوں کیسے ہو گیا یار, یہ کیا نیوز آ گئی یار, یہ کیا ہو گیا, تو تمہیں پتا چلا. یہ ساری باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور سچی بات یہ کہ ان میں سے میجورٹی باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ بھی ہمارے لیے اسٹریس کا اور ٹینشن کا, ڈپریشن کا اور ہمارے موڈ کی خرابی کا, اور جو چیزیں بظاہر نہیں ہونے کی ہم اس کو لیے سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں اگر ہو گیا تو اب 2025 میں کیا ہوگا کرونا کے بعد, یا 2025 تک ہم زندہ رہیں گے بھائی, ہمیں تو وہ نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, لمبی لمبی سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں طول عمل یعنی لمبی امیدوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح گھر کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم الجھتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, یہ بول دیا, یہ سن لیا, یہ دیکھ لیا, یہ کھا لیا, یہ پی لیا, وقت پر نہیں ملا, یہ نہیں ملا, اٹھا نہیں تو بیٹھا نہیں تو چلا نہیں تو سمجھا نہیں تو مسکرایا نہیں تو یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, ارے باپ رے باپ کوئی کہانیاں یار کیا ہو گیا ہم لوگوں. چھوٹی چھوٹی باتیں, دنیا میں بڑے بڑے مسئلے ہیں, گھر کے اندر تو مسئلے ہی بڑے عجیب و غریب ہیں. بلب اڑ گیا, اب مسئلہ یہ گھر کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنا مطلب کہ بلب نہیں جل رہا, ٹیوب لائٹ نہیں جل رہی ہے, پنکھا آواز کر رہا ہے. یہ اس وقت ہمارے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں پنکھا آواز کر رہا ہے. اب کچھ بولنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے چلو گھر کے حساب سے یہ ایک پرابلم ہوگا, لیکن یہ ایک بات ہے, ایک مسئلہ ہے, ایک کام ہے. اس کو ایشو بنانا, اس کو ٹینشن لے لینا, اس پہ لڑائی جھگڑے شروع کر دینا, اس کو بولنا شروع کر دینا, یہ کر دینا, وہ کہہ دینا, چیخو پکار کر لینا. اچھا پھر چیختے ہم وائی, کیوں چیخ رہے ہیں بھائی, سامنے والا بیٹھا ہوا ہے, اتنی دور بھی نہیں ہے کہ آپ چیخو گے تو آواز جائے گی. تو یہ تھوڑی سی ہمارے اندر بھی وہ بردباری کی کمی ہے, تحمل کی کمی ہے, صبر و برداشت کی کمی, جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ایزی رہنا شروع کریں. پھر وٹامن سی اور وٹامن ڈی کے تعلق سے ڈاکٹر کامران نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے ڈائٹ پر تھوڑی ڈسکشن کی تھی کہ دال, سبزی, مچھلی, چکن, مرغی, گوشت اور ان تمام تر چیزوں کو پلان کر کے, روٹی بھی ہے تو چاول بھی ہیں تو سارا ایک پلان کر کے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ, اسی طرح انڈے ہیں اور مزید تو کچی سبزیاں ہوتی جو کھائی جاتی ہیں, یہ سب ہیں, فروٹ ہے تو دن میں جیسے کہ کوئی ایک آدھ ہمارا تھوڑا سا فروٹ کھانے پر ہماری وہ چلی گئی توجہ, پھر کوئی ایک آدھ سبزی کی طرف کوئی توجہ چلی گئی. ایسی کچی سبزیاں جیسے کھیرا ہے, ککری ہے, گاجر ہے, اس طرح کی کئی کچی سبزیاں ہیں
जो हम खाते हैं और खाई जाती है घर के अंदर, नॉर्मल खाई जाती है, सैलड में खाई जाती हैं, तो ये वो कई चीज़ें जिस पर हम अगर तवज्जो करें, फैमिली तवज्जो करें, और इसको चूँकि ये किचन औरतों के हाथों में होता है, और बचपन से अगर ये औरतें अपने बच्चों की और इस तरह फैमिली मेम्बर अपनी आदत बना लें, और इस तरह एक डाइट प्लान हो जाए आपस के मशवरे से भी अगर कर लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक सेहतमंद घराना और फिर उसके साथ इंशाल्लाह इबादत, मज़े को मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हम हमारे हाल पर रहम फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए एक्सरसाइज के ताल्लुक से जो हमारे पास रिपोर्ट है वो देख लेते हैं।
जिस्मानी मशक्कत ना की जाए तो सेहत के साथ क्या हो सकता है। हर इंसान को गिजा ईंधन के तौर पर चाहिए होती है, लेकिन अक्सर हम अपनी जरूरियात से ज्यादा कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खुसूसन आजकल के माहौल में जब इंसान बहुत ज्यादा फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये कैलोरीज हमारे जिस्म में चर्बी कोलेस्ट्रॉल की सूरत में जमा हो रही होती है, और हमारे वजन में इजाफे के अलावा हमें बीमारियों में भी मुब्तला कर रही होती है। बीमारियों से बचने और खुद को फिट रखने का हल जायद कैलोरीज को जिस्म से खारिज करने में है, और ये वर्जिश से मुमकिन है। शुरू में हल्की वर्जिश से इब्तिदा करें और अपनी कुव्वत और उम्र के लिहाज से इसमें बतदरीज इजाफा करें। अगर इंसान जिस्मानी मशक्कत और वर्जिश ना करे तो हमारे जिस्म पर इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं, जैसे नींद में कमी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, जिस्म का सुस्त पड़ जाना, खून में शुगर लेवल का बढ़ जाना, कुछ अकसाम के कैंसर के खतरात, हड्डियों में दर्द, डिप्रेशन का शिकार होना, वजन का बढ़ जाना वगैरह।
कोरोना के लास्ट 2 ईयर्स ने 2020 के जनवरी से अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 साल तक, और अभी भी कोरोना के कुछ ना कुछ असरात बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कमी आ गई, अल्लाह करे कि मुकम्मल तौर पर हमारी इससे निजात हो जाए। ताहम कोरोना के इन तमाम तर महीनों में जो एक बहुत ही अहम बात खुलकर सामने आई है, इस पर काफ़ी बयान किया गया है, वो है इंडोर एक्सरसाइज। क्योंकि जिम बंद थे, एक्सरसाइज के लिए पार्क में नहीं जा सकते थे, तो कहाँ जाएंगे? क्यों पार्क बंद और जिम बंद, और जिम का माहौल मैं तो रिकमेंड नहीं करता इतना पर्सनली, तो पर यह है कि भाई ऐसा जिम कहाँ से लाएंगे जहाँ जाएं और आपको नेकियाँ मिलें और मतलब तकवा परहेजगारी या गुनाह से बचकर जिम कर ले बंदा। तो जिम का माहौल अगर ऐसा है कि गुनाह से बचकर बंदा ये एक्सरसाइज वगैरह कर सकता है तो एक अलग टॉपिक बन जाता है। अदरवाइज क्योंकि 2-2 साल 1.5-1.5 साल तक जिम बंद रहे, एक्सरसाइज यूनिट बंद रहे, पार्क्स बंद रहे, सब बंद रहे, तो इन तमाम तर औकात में, इन तमाम तर टाइम में मतलब कि इनडोर एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, बहुत ज़्यादा बयान किया गया। तो घर के अंदर होने वाली एक्सरसाइज 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की एक्सरसाइज, एज वाइज, वेट वाइज, मेल एंड फीमेल अलग अलग, इन तमाम तो एक्सरसाइज के ताल्लुक से जो मेरी नॉलेज आई है, जब सब्जेक्ट आता है सामने तो फिर मैं कुछ नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये सारी एक्सरसाइजें उमूमन बयान की गई हैं। तो आई थिंक कि अगर आप कोई एक्सपर्ट्स व्यू के साथ चलें, ये याद रखिएगा कि एक्सरसाइज का ताल्लुक एज से भी है और वेट से भी है। आपका वेट और आपकी एज आपको जिस एक्सरसाइज करने की मतलब कि परमिशन देती है उस तरफ जाइएगा, वरना बसा औकात बंदा एक्सरसाइज करने बैठता है और अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम कर लेता है, कोई हड्डी सुजा देगा या कोई इसकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पट्ठे भी बाद औकात इससे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज खुद एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन हर एक को पैदल चलने के साथ घर में पैदल चला जा सकता है, चला जा सकता है, आधा घंटा पौना घंटा चलते रहे, थक कर बिल्कुल बैठ जाए फिर थक है, अगरचे ये उस तरह के पैदल चलना नहीं है, लेकिन वो एक है ना कि समथिंग बेटर देन नथिंग, ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो बिल्कुल बैठे रहने से अच्छा है कि आदमी कुछ ना कुछ मूवमेंट करता रहे। आप मोबाइल पर अगर आप बिजी हैं तो चलते चलते चाहें तो आप बात कर सकते हैं, जरा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो चलते चलते बाज़ औक़ात बंदा कर सकता है। और इसके अलावा प्रॉपरली एक एक्सरसाइज के नाम पर जिससे आपका पसीना निकले, इससे कैलोरीज बर्न होती हैं और आपको एक अच्छी सेहत की तरफ लेकर जा रही होती हैं। तो ये एक हमने कहा कि एक एक्सरसाइज के ताल्लुक से एक इन्फॉर्मेशन थी। सोशल मीडिया की एक रिपोर्ट है हमारे पास कि किस तरह सोशल मीडिया से निकल कर एक आदमी पुरसुकून जिंदगी की तरफ गया, आइए देखते हैं।
फोन से सोशल मीडिया को निकालने वाले शख्स की कहानी। मोबाइल से जब एप्स डिलीट कर दी तो क्या हुआ? आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। स्मार्टफोन ने इंसानों की जिंदगी तब्दील करके रख दी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्बत सरगर्मियों के लिए बुरा नहीं, मगर इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल खुसूसन सोशल मीडिया से लोगों पर नफ्सियाती और जिस्मानी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया के मुआशरे और लोगों पर होने वाले असरात का जायजा लेने के लिए एक मुताला किया गया। मुख्तलिफ अफराद से किए गए मुताले के दौरान सोशल मीडिया को खैराबाद करने वाले शख्स से जब उसके तजुर्बे के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो अपने मोबाइल फोन से दूर नहीं हो सकता था, चाहे घर हो या गाड़ी, दोस्तों में हो या ऑफिस में, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल किया करता था। इसे सोशल मीडिया नशे की तरह लगता था और वो अपने आप को इसमें मुब्तला समझता था, लेकिन आज वो इस कैफियत से आजाद है। ये किस तरह हुआ? इसके मुताबिक नौजवान ने बताया कि करीब 14 महीने पहले सोशल मीडिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद सबसे पहले तो उसकी नींद बेहतर हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ आने लगा। एहसास कमतरी, बेचैनी और नफ्सियाती असर जो इस पर सोशल मीडिया की वजह से हुए थे, वो इनसे भी आजाद हो गया है। इसका मजीद कहना था कि हर दिन इसके कई घंटे सोशल मीडिया पर गुजर जाते थे, जिसका उसको इदराक तक नहीं होता था, लेकिन अब वो खुश है कि इसको सोशल मीडिया छोड़े 14 महीने गुजर चुके हैं। अब चीजों के बारे में सोचने समझने का ज्यादा वक्त मिल रहा है, खानदान और अपने लिए वक्त भी ज्यादा मुयसर है।
ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात थी। अगर आपके पास आपका स्मार्टफोन है और आप अपने स्मार्टफोन के अंदर देखें तो आपके इस फोन की स्क्रीन पर आपको कई अपनी एप्लीकेशनें आपने डाउनलोड करके स्क्रीन पर आपने उसको रखी हुई है, राइट? अब आप गौर करें कि इनमें से नंबर एक वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो पूरे साल गुजर गए, दो साल गुजर गए या कई महीने गुजर गए, आपने कभी उस एप्लीकेशन को खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है, झांका ही नहीं है, यूजलेस है, बस ले लिया आपने, तो उसको अनइंस्टॉल कर दें अगर वाकई इसका कोई है ही नहीं इस्तेमाल। सेकंड, अब वो देखें जो आपके महज वक्त को बर्बाद कर रहा है, वक्त को ज़ाया कर रहा है, कब्र आखरत को नुकसान पहुंचा रहा है और आपकी मतलब आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, वो एप्लीकेशंस देखें, डिलीट, अनइंस्टॉल कर दें, निकाल दें मोबाइल से, निकल गई, अब मोबाइल में रहा क्या? कितना ईजी हो जाएंगे आप। इसी तरह कई लोग हैं जिनका हकीकत ये कि सोशल पेजेस से इनका है, अच्छा है भी नहीं, शायद ऐसे एक तादाद मिलेगी इस वक्त भी सोसाइटी के अंदर जो सोशल मीडिया या सोशल पेजेस के ताल्लुक से इनको इतनी वो नॉलेज है ही नहीं, कोई वो नहीं रखते मालूमात, वो यूज़ भी नहीं है उनका, आता भी नहीं है, उनकी भी ज़िंदगी तो गुजर ही रही है ना, और हमारी ज़िंदगी गुजरती थी। लेकिन अब एक ऐसा मामला जो हमें जहनी जिस्मानी तौर पर परेशान कर रहा है, हमारी सेहत को नुकसान पहुँचा, हमारी कब्र आखरत को भी उससे नुकसान पहुँच रहा है, तो इस मामले में बंदा सीरियस ले, खुद को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, खैर इट्स नॉट गुड फॉर मी। तो जब ये है आपके लिए दुरुस्त नहीं है हमारे लिए, तो हमने फिर इसको मतलब कि क्यों अपने साथ अटैच किया हुआ है? कोई हम प्रेशराइज नहीं है, कोई गन पॉइंट पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस नफ्स की शरारत है, नफ्स का धोखा है, शैतान ने हमको बस तबाह बर्बाद किया हुआ है, वो कर रहा है वो। तो इस तरह आप चाहें तो अपने आप को इजी कर सकते हैं। खसरा बच्चों में बढ़ता चला जा रहा है, खसरा, इसके ताल्लुक से ये रिपोर्ट देखते हैं।
मुल्क में खसरा केसेस में इजाफा, 8 माह के दौरान 470 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक बार फिर खसरा केसेस में इजाफा हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक 8 माह के दौरान 470 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे पंजाब में 8 माह के दौरान 13 अजला की 63 यूनियन काउंसिलों में खसरा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 12 बच्चों की अमवात भी हुई। रावलपिंडी में 86 और लाहौर में 49 बच्चे खसरा से मुतासिर हुए। 2018 में 11,000 से जायद बच्चे खसरा में मुब्तला हुए थे।
अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। इस हवाले से डॉक्टर कामरान ने हमें अपनी राय दी है, आइए वो भी देखते हैं।
खसरा एक मुतअद्दी बीमारी है जो एक वायरस के जरिए फैलती है और वो हमारे निज़ाम तनफ्फुस यानी सांस के जरिए जो है वो चले जाती है। अगर कोई खुदा ना खास्ता मरीज ऐसा हो खसरे का हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे क्राउडेड हो बहुत ज्यादा या घर के अंदर ही मौजूद हो तो वो सांस लेता है या खांसता है या छींकने से उसके जरासीम स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं और इस तरह वो दूसरा जो है उसके जर्द में आ जाता है तो फिर वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है। उमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि खसरे की अलामत जब स्पॉट्स आ जाएं यानी कि रेड स्पॉट्स यानी कि धब्बे अगर आपके अंदर आ जाएं तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। जब खसरा आपका स्टार्ट होता है तो अलामत से पहले से भी वो इन्फेक्शन फैलाने का बाइस बन सकता है। इसके जो अलामत आपको मिलती हैं वो आपको फीवर मिलता है, बुखार 103 104 के करीब बुखार मिल जाता है, रैशेस मिल जाते हैं, उसके बाद जो है गले के अंदर खराश मिल जाती है, कुछ नजर जुकाम की कैफियत भी मिलती है, जिस्म में दर्द की कैफियत भी मिलती है, और एक्सट्रीम पोजिशन में जब आप आखिर में जा रहे होते हैं तो एक बॉडी के अंदर लाल लाल रंग के जो है धब्बे आपके शुरू हो जाते हैं, जो खारिश का मौजूद भी बनते हैं, खारिश भी उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर कोई स्पेशल दवा नहीं होती है, इसमें जो है आप जो बुखार वगैरह की दवा है तो बुखार को कंट्रोल करेंगे, या जिस्म में दर्द है तो उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो है इसका एक वैक्सीनेशन होती है, अगर बचपन में ही उस वैक्सीन को लगवा लिया जाए जो मीजल्स की वैक्सीन कहलाती है, अगर वही आप उसको लगा लेंगे तो उससे यह है कि 99% चांसेस होते हैं कि आप इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। अगर किसी बड़े को ये बीमारी हो जाती है तो अपने डॉक्टर से कंसर्न करके, और अगर उसने उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसने वैक्सीन नहीं भी लगवाई हुई उस चीज़ की मीजल्स की, जो भी आपके डॉक्टर हैं उससे कंसर्न करके मशवरा करके इसकी वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी ऐसा कोई खसरे का मरीज होता है तो कोशिश करें कि उससे एक फासले के साथ रहें और उससे इंटरेक्शन आपका कम से कम हो, ताकि आप बीमारी फैलाने के सबब ना बन सकें। थोड़ी सी एहतियात करके इस बीमारी से भी आप बच सकते हैं।
अल्लाह आपको मुझे इस समय दीगर बलाओं और आफत और बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए। हादसात मज़ीद बढ़ते ही चले जा रहे हैं, एक्सीडेंट, और ये एक्सीडेंट के बढ़ते एक्सीडेंट की तादाद हमें मौत की याद दिलाती है कि कुछ नहीं कह सकते कि कब कौन किस वजह से बंदा दुनिया से चला जाए, लेकिन एक बड़ी वजह जो लोगों की हलाकतों की है, दुनिया से चले जाने की है, जाँ बहक हो जाने की है, उसकी एक बहुत बड़ा इस वक्त जो वजह बन रही है वर्ल्ड वाइड, वो हादसात हैं, रोड एक्सीडेंट हैं। उसकी एक रिपोर्ट है हमारे पास और कुछ खबरें हैं, आइए वो देखते हैं।
कराची सीएनजी स्टेशन में गैस लीकेज से धमाका, 4 अफराद जाबहक, 7 जख्मी। मुसाफिर वैन ब्रेक फेल होने से हादसे का शिकार, 3 जाबहक, 8 अफराद जख्मी। पत्तोकी में मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 नौजवान जाबहक। कश्मीर में रोड हादसा, 13 अफराद जाबहक, मुसाफिर बस के कई टुकड़े हो गए।
बहुत बड़े बड़े हादसात इस दुनिया भर में हो रहे हैं, हम तो इसको थोड़ा सा आपके सामने एक मुख्तसर सी चीज़ें बयान करते हैं शॉर्ट टाइम के ताल्लुक से, वरना देखा जाए तो दुनिया में ट्रैफिक के हादसा स्पेशली जो सीएनजी के वजह से जो हादसा हो रहे हैं और इसमें नाकिस मटेरियल की वजह से जो इसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अल्लाह करे कि हम उसको सीरियस लेने में कामयाब हो जाएं। तरह अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में बसा अवकात जो वाकियात हो रहे होते हैं वो गैस हीटर की वजह से बहुत सारे वाकियात हो जाते हैं कि लोग सर्दी में गैस हीटर लगाते हैं या इस तरह के, मतलब आग के ज़रिए जो तपिश लेने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें बे एहतियाती की वजह से एक गैस लीकेज की वजह से कईयों की अमवात हो जाती हैं, घर में गैस बढ़ जाती है, दम घुटकर मर जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि इन तमाम तर पहलू को सामने रखकर एहतियातों के साथ जीने की आदत पैदा करें। आइए कुछ कॉल्स भी लेते हैं।
मेरा सवाल ये है कि ये इस मतलब बच्चों को हम इस कारण से बचाने के सोशल मीडिया की क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, और बार बार कहने के बावजूद बच्चे जो है वही अमल करते रहते हैं जिसकी वजह से उनसे मतलब पूरे असरात जाहिर हो रहे हैं, तो आप कुछ हमें मतलब ऐसा अमल बताएं और ऐसी फर्ज अमली बताएं जिसकी वजह से हम मतलब बच्चे को जो है इनको उस चीज से बचा सके।
पहले कुछ इस बाजू पर मैंने अर्ज की थी, अल्टरनेट दें, बच्चा इस वक्त आपके साथ आपके सामने या किसी कमरे में बैठा हुआ गेम खेल रहा है या मोबाइल पे मसरूफ है, आपने ले लिया दो, जब देखो मोबाइल पे मसरूफ रहते हो कोई काम है या नहीं है, अब मोबाइल नहीं हाथ लगाना, ठीक है, मोबाइल लेकर चले गए, बच्चा बैठ गया सहम गया, एक मिनट दो मिनट तीन मिनट, अब क्या करे बच्चा, बच्चा है, बच्चा बैठेगा तो नहीं ना, उसको तो एक्टिविटी चाहिए, तो इसके लिए उसको अल्टरनेट देना पड़ेगा। उमूमन हम मशवरा देते हैं कि बच्चे को अपने साथ इंगेज करें, पेरेंट्स करते रहें, हम इसी तरह मतलब करोड़ों लोग बड़े हो गए आज, वो उनके बच्चे हैं, वो कैसे बड़े हो, उसको कौन सा मोबाइल था, जब हम बच्चे थे तो हमारे पास कौन सा मोबाइल, देने उस वक्त मोबाइल का तो नाम ही नहीं सुना था हमने, के मोबाइल भी था, और हमसे पहले के जो हमारे वालिद वो भी बच्चे तो थे, उनको इनके वालिद ने बड़ा किया था, तो उस वक्त तो मोबाइल नहीं था, तो बच्चे तो बच्चे ही थे, किसी वक्त पे ऐसा तो नहीं था कि बच्चा बड़ों वाले काम करता था, बच्चा तो बच्चों वाले काम करता था, वो सदियों से यही चलता चला आ रहा है। तो बच्चे को अल्टरनेट देना पड़ता है, और इसमें भी बच्चों की भी क्वालिटी होती है। कुछ होते हैं जो थोड़े से मतलब कि वो ठंडे टाइप के होते हैं और इतने ज़्यादा उनके अंदर वो ओवर एक्टिव नहीं होते, बट बस बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं, वो मतलब उनके अंदर उनको बैठने की जैसे उनके अंदर क्वालिटी होती कोई नहीं है, तो उनको ज़्यादा फिर आपके अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो जैसे मदनी चैनल पर आप देखते होंगे किड्स मदनी चैनल में या दीगर हमारे प्रोग्राम के अंदर बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, लेकिन उस एक्टिविटीज़ में भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, कुछ अपने आप को उसके साथ एंगेज करना पड़ता है। इसी तरह मैंने देखा है कि अगर कोई बच्चा मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा वो रहता है तो उसको अगर वो गुलाम रसूल के जो हमारे मदनी खाके हैं कार्टून से जो दावत इस्लामी के हैं पूरी उसकी एक ऐप है वो मतलब उनको दे देते हैं, तो वो फिर वो देखते 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 उसका एक टाइम, क्योंकि वो कार्टून के अंदर उसको 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 उसकी गिज़ा मिल रही होती है। इसी तरह किड्स मदनी चैनल है तो उसके सामने जब उसकी नशरियात आती हैं तो बिठा दिया। अलगरस आपको बच्चों को एक्टिविटी देनी पड़ेगी, इसको इंगेज करना पड़ेगा, चाहे वो मतलब जो भी हो। अब वो इंगेज जो एक्टिविटी आप उनको दे रहे हैं वो इनके अखलाक और किरदार को और उनकी सेहत को बर्बाद ना करे, ये चीज़ें ज़रूर नोटिस कीजिएगा और उसके बाद देखिए कि क्या है। तो ये एक इशू है और ये यूनिवर्सल इशू है, ये जब एक दो घरों का मसला नहीं है, ये यूनिवर्सल इशू है। शायद ही कोई घर इससे बचा हुआ हो इल्ला माशाल्लाह, अदरवाइज ये यूनिवर्सल इशू है। और शुरू में थोड़ा सा पीसफुल मोड में पेरेंट्स चले जाते हैं, बाद में यही जो बच्चों की आदत होती है वो पेनफुल भी हो जाती है, वो पीसफुल से पेनफुल जोन में कब दाखिल हो जाते हैं शायद इनको भी इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो एहतियातें हमको करनी भी हैं और अल्टरनेट बच्चे को देना है। दावत इस्लामी ने कुछ ना कुछ अल्टरनेट देने की कोशिश की है मोबाइल के ज़रिए, अपने एप्लीकेशंस के ज़रिए, कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी आपकी अपनी दावत इस्लामी का इस मौजू पर काम जारी ही है कि बच्चों को मोबाइल के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए, एप्लीकेशंस के ज़रिए, यानी डिजिटल एक्टिविटीज़ वो क्या क्या दी जाएँ जिससे बच्चे घरों में इंगेज भी रहें, मसरूफ़ भी रहें और इनके अखलाक और किरदार बिगड़ने के बजाय संवरने की सूरत पैदा हो, दुरुस्त होने की सूरत पैदा हो। अभी दुआ करें, अल्लाह खैर फरमाए, इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।